जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. श्रील बाण हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति या दुःखं निहायाः सुखावृतः। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। सुखाय दुःख मोक्षाय, सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति या दुःखं अनीहाय सुखावृतः। सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति या दुःखं अनीहाय सुखावृतः। भाषांतर। इस भौतिक जगत में हर भौतिकवादी व्यक्ति सुख प्राप्त करके दुख का नाश करने हेतु संकल्प सिद्ध होता है, लेकिन व्यक्ति जब तक सुख पाने हेतु प्रयत्नरत नहीं होता तब तक ही सुखी रह पाता है। जैसे ही वह सुख प्राप्ति हेतु कार्यारंभ करता है उसके दुख शुरू हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवद गीता में वर्णन हुआ है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के आदेशानुसार प्रकृति से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमा रहे हैं, मानो वे भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हो। भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है और जीव जैसी इच्छा करता है उसी के अनुसार भगवत उसे कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह शरीर एक यंत्र समान है जिसके द्वारा मनुष्य सुख की मिथ्या इच्छा के अनुसार घूमता रहता है और विभिन्न योनियों में जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से पीड़ित होता रहता है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना तथा कामना से अपने कार्य आरंभ करता है, किंतु उसे अपनी योजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत जो ही वह अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है कि तुरंत ही कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। अतएव मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं इति मन्यते। यद्यपि मनुष्य अपने मिथ्या कामना के अनुसार कर्म करता रहता है, किंतु वह सोचता है कि अपने कर्मों से वह अपनी भौतिक स्थिति सुधार सकता है। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सुख बढ़ाने का नहीं दुख को कम करने का प्रयास करे, क्योंकि यह सब व्यर्थ होता है। तस्यै वह तो प्रयतेत वो विदः। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना चाहिए, न कि आर्थिक विकास के लिए, जिसको कर पाना असंभव है। बिना प्रयास के ही उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा, कोई इसे बदल नहीं सकता। अतएव श्रेयस्कर होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावना मृतमय आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य होकर उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। यह अच्छा होगा कि तथाकथित सुख की कामना के लिए बिना कृष्ण भावना मृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। यह अच्छा होगा कि तथाकथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावना मृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सारिणं येन भूतले स्वयं रूपापदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीमत्पदपदं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैष्णवसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णप्रदा सहगणादिताश्रीशाकारिताश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सर्व उपस्थित जनांना एक सूचना आहे, नेहमीची सूचना आहे खरं तर, कि आपले भ्रमणध्वनी अर्थातच मोबाईल हे स्विच ऑफ करा किंवा व्हायब्रेशन मोडवर ठेवा। हिंदी में बोलता हूँ, आपके मोबाइल कृपया स्विच ऑफ कीजिए या व्हायब्रेशन मोड पे रखिए, क्योंकि बाकी लोगों को आपसे तकलीफ ना हो। तो संकल्प करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस श्लोक के हिसाब से शायद अगला नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल्स ऐसे आएगा कि जो ऐसे अनाउंसमेंट सुनते ही खुद स्विच ऑफ हो जाएगा। ये अभी नया रेजोल्यूशन निकालना चाहिए, 2013 में ऐसा मॉडल आना चाहिए। तो हमें मालूम है आप में से कितने लोगों ने आज तक कभी तो संकल्प किया है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अरे सब लोग इतने स्ट्रांग है, मेरा तो बहुत बार हुआ है कि संकल्प तो किया है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा चीज मेरे बारे में तो एक्सरसाइज के बारे में होगी, या बहुत लोगों को वेट लॉस, डाइट कंट्रोल, ये सब कुछ जो संकल्प है वो संकल्प ऐसे होते हैं कि आज तो तय कर लेते हैं कि कल से एक्सरसाइज चालू करेंगे, लेकिन कल जब उठना पड़ता है तो बोलते हैं अरे कल से एक्सरसाइज करना, हमने तो तय किया था कल से करना है, आज से थोड़ी करना है, तो कल से करेंगे। और कल कल होते हुए कभी कल आता ही नहीं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दो तीन दिन तो चालू कर देते हैं लेकिन चौथे दिन से सोचना प्रारंभ कर देते अरे कोई व्यवधान क्यों नहीं आ रहा है जिससे मैं डिसकंटिन्यू करूं। नहीं, जब वो व्यवधान आता है तो उससे दुख होने के बजाय हमें सुख मिलता है कि हाँ कुछ तो रिजल्ट मिला कि मैं डिसकंटिन्यू कर सकूंगा। तो जब ये संकल्प की बात आती है तो हमेशा हम सोचते हैं कि अरे ये संकल्प करता कौन है, और समझो कि हमारे इसमें किसी ने किया है संकल्प तो फिर तोड़ता कौन है। तो ये आज का विषय है। तो ये संकल्प कौन करता है? तो हमारा मन संकल्प करता है। हम जब आगे जाके मन के कार्य देखेंगे तो उसमें कार्य है संकल्प करना। तो मन संकल्प करता है तो बाधा कौन बनता है? तो मन ही बाधा बनता है। और योग्य संकल्प कौन से हो सकते हैं और संकल्प सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? ये चार प्रश्नों के उत्तर हम भगवद गीता के माध्यम से आज के इस प्रवचन में देखेंगे। तो अब हम मन के बारे में सोचना चालू करते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 700 श्लोकों में कम से कम 200 श्लोक ऐसे हैं कि जो मन के बारे में बताए हैं। एक तो इंद्रिय बोल के उसको बताया गया है, या डायरेक्ट मन ऐसे बताया गया है, या मन का निग्रह कैसे करें इसके लिए ज्ञान भगवान ने दिया हुआ। तो हम देख सकते हैं कि भगवत गीता एक मन संहिता है, ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसीलिए केवल भगवत गीता बताई गई है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये मन है। तो मन का हम क्या क्या आज अभ्यास करने वाले हैं? सबसे पहले ये देखेंगे कि ये मन है क्या, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो मन के बारे में बहुत बताया है लेकिन हमारे जो पश्चिमी लोग हैं उनके शास्त्रों में मन की भाषांतर तो है माइंड, लेकिन वो कहाँ है, वो क्या करता है, वो क्यों हमेशा चंचल रहता है, इसके बारे में कुछ चीजें नहीं है। तो ये मन क्या है ये हम देखेंगे। मन के स्वभाव क्या है? एक बार हमने बंदर बोला तो उसके स्वभाव हमारे आंखों के सामने आ गए। बंदर ध्यानस्थ बैठा हुआ नहीं मिलेगा, वो उछल कूद करता हुआ ही मिलेगा, लेकिन वो किसी बड़े प्राणी से झगड़ा भी करता हुआ नहीं मिलेगा। तो उसके कुछ गुण विशेष है, वो नकल करेगा, वो पेड़ के ऊपर, और वैसे देखा जाए तो बाह्य स्वरूप से वो खुश रहेगा, ऐसे बहुत दुखी बंदर है आंखों से पानी आ रहा है ऐसे कभी नहीं मिलेगा। तो वैसे मन के स्वभाव क्या है कि एक बार मन ऐसे हमारे मन में आया तो हमें ऐसे पता लगना चाहिए मन यानी है और यानी ये है और मन यानी ये नहीं है, तो वो हम चर्चा करेंगे। मन के विकार कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जब मन से मन के स्तर पर जीते हैं तो हम कैसे जीते हैं, और जब हम मन के स्तर से ऊपर उठ के जीते हैं तो कैसे जीते हैं, इसका भी हम अभ्यास करेंगे। संस्कृत भाषा इतनी शास्त्रीय है कि उन्होंने हमको मनुष्य या मानव बनाया है जो मन के स्तर पे जीता है, और जो चतुष्पाद है उनको प्राणी बताया है जो प्राण के स्तर पे जीते हैं। तो वैसे ही हम मन के स्तर पे जीने वाले हैं, इसलिए हमको मानव कहा गया है। दूसरी एक व्याख्या है कि हम मनु से आते हैं, इसलिए हमें मानव कहा गया है। मन का विकास कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये समझो सारे जग ने सिर्फ इतना ही प्रयास किया तो मेरे ख्याल से कोई वॉर नहीं होगा, कुछ जो दिल्ली में घटना हुई ऐसी घटना भी नहीं होगी। मनोविकास के मार्ग क्या है, सबके सबको चाहिए, किसको चाहिए कि अपना मन नियंत्रित ना हो, ऐसा किसकी इच्छा है? किसी ने हाथ ऊपर किया, शायद छोटा बच्चा है। तो सबको लगता है कि मन के ऊपर मेरा नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो मनोविकास के मार्ग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है, इसके बारे में भगवद गीता ने हमें क्या बताया है, वो भी हम देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम मन का निग्रह करते हैं। क्यों? एक जगह से निग्रह करते हैं क्योंकि दूसरी मेरे भौतिक चीज के लिए उसको लगाना है, इसलिए। तो भगवान कहते हैं ये भी गलत है। मन का निग्रह करना यानी मन को अच्छी जगह लगाना, यही है। मन को हम ऐसे नहीं कर सकते कि तू इधर मत जा, तू उधर मत जा, तू ये मत सोच, वो मत सोच। ऐसे में बहुत बार उदाहरण देता हूं कि एक राजा कहता है कि मुझे मन को नियंत्रित करना है, आप बताओ। तो उसमें एक जो राजा के जो राजपुरोहित होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, एक 7 दिन तक एक लाल मुंह वाला बंदर के ऊपर सोचना बंद कर दो। लाल मुंह वाला बंदर ये सोचना नहीं है आपको 7 दिन। तो अभी वो कैसे करे, ये सोच भी उसके मन में जब आती है कि मुझे लाल मुंह वाले बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो तब उसने सोचा हुआ रहता है। तो वो 7 दिन के बाद जाता है कि अरे बहुत मुश्किल है। तो तभी वो राजर्षि कहते हैं कि हाँ, मन को सिर्फ नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको दूसरी अच्छी चीजों में लगाना बहुत आसान है। जैसे हम जब बचपन में कुछ कहीं हमारा मन भटकता था, परियों के राज्य में जाता था, राक्षस आते थे, कुछ ना कुछ लड़ाई होती थी, लेकिन अब हमारा मन उधर नहीं जाता। ऐसा नहीं कि वो मन वहां गया नहीं है, लेकिन अभी उसमें और कहीं तो लग रहा है, उसमें और ज्यादा कहीं तो इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए वहां नहीं जाता। तो मन का नियंत्रण, इसका मतलब मन को किसी अच्छी जगह पे लगाना, ये है। तो मन क्या है, भगवद गीता में 7वें अध्याय में 4वें श्लोक में कहा है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान कहते हैं, भगवान खुद के बारे में जब कहते हैं और हम उसकी उनकी शक्तियों के बारे में कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। तो हमारे शरीर में बैठा हुआ हमारा मन, ये भगवान की ताकत है, एक भगवान की शक्ति है। तो जब तक हम भगवान से कह के उसको कंट्रोल नहीं करते, तब तक हमारे इच्छा से वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है, तो उस बुद्धि से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो बुद्धि आज भी कार्य करती है, फिर भी मन नियंत्रित क्यों नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। तो मन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मेरा ये कहना इस श्लोक के अर्थ ऐसा है कि मन को हाँ हो जाएगा, आज नहीं तो कल नियंत्रित हो जाएगा, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक खुद ब खुद मन नियंत्रित नहीं होता है। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा था, मन के बारे में चर्चा चल रही थी, बीरबल बहुत दृढ़ था कि मन कभी भी किसी का नियंत्रण में नहीं आता जब तक वो खुद प्रयास नहीं करता। तो अकबर ने कहा नहीं नहीं, जब हमारी इंद्रिय शिथिल हो जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो अपने आप मन इच्छा करना बंद कर देता है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अकबर ने बोला दिखाओ मुझे। तो एक अतिशय वयोवृद्ध जरा जर्जर आदमी होता है जो लेटा हुआ रहता है, तो उसके सामने अकबर की बहुत सुंदर लड़की को ले आ जाता है और बीरबल कहता है कि सिर्फ उसकी आंखों की चमक के तरफ आप ध्यान दो। तो तो ऐसा ही वो शिथिल गात्र हुआ हुआ बूढ़ा आदमी जब वो उस लड़की के चेहरे को देखता है तो उसके आंखों में एक अलग सी चमक उसको उसके साथ उसका उसकी भोगने की इच्छा की जो चमक आती है वो उसके आंखों में आती है। तो वो कहते हैं, बीरबल कहता है कि हालांकि आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन मन की इच्छा तो चालू रहती है, इसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं होगा शायद लेकिन मन इच्छा करना बंद नहीं करेगा। अभी बहुत ऐसी हमारे जीवन के भी उदाहरण है कि हम जब रास्ते पे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग मॉडल्स गाड़ियों के जाते हैं कि जो हमें मालूम है कि हमारे पूरे जन्म की सैलरी या पूरे जन्म का उत्पन्न से भी ज्यादा महंगी है, इसलिए मन वो गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेगा ऐसा नहीं है, वो तो यार मुझे एक बार तो चाहिए ऐसा मन में आता ही है। हालांकि मुझे मालूम है, बुद्धि को पूरा मालूम है कि ये मैं पूरा का पूरा मेरे कहीं कभी कभी तो 7 पीढ़ियों का भी पूरा निकाला हिसाब तो भी वो उसके आगे है, इसे दुख करने की कोई बात नहीं, उसकी कुछ कीमत नहीं है एक्चुअली वो। फिर भी तो इसीलिए ये भगवान की शक्ति है, ये ध्यान में रखना चाहिए और वो सहज शक्य नहीं है कि हम उसको नियंत्रित करें। दूसरा भगवान क्या कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना है तो इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर् बुद्धेः परसस्तु सहा। भगवान ने क्रम दिया है कि कौन किसको कंट्रोल कर सकता है। भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, हमारी इंद्रिया है वो ये जड़ पदार्थ जो है, ये किताब ये जड़ पदार्थ है, ये लैपटॉप जड़ पदार्थ है, उससे ज्यादा शक्तिमान है क्योंकि ये हमारी इंद्रिया उसका उपयोग कर सकती है, ये हमारा उपयोग नहीं कर सकती। हालांकि चित्र बदल रहा है लेकिन अभी तक तो ऐसा ही है। दूसरा, मन इंद्रियों से बढ़कर है, इंद्रियों से मन का नियंत्रण नहीं हो सकता, मन से इंद्रियों का नियंत्रण हो सकता है, बुद्धि मन से भी उच्च है तो हमें बुद्धि का इतना विकास करना चाहिए कि वो मन को नियंत्रित करे और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे मन के विषय में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में 22वें श्लोक में कि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि, सारी इंद्रियों में मैं मन हूं ऐसे भगवान कहते हैं, भूतानां अस्मि चेतना कि मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूं, जीवन शक्ति या चेतना। तो भगवान यहाँ विभूति योग में क्या क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे महान सबसे श्रेष्ठ सबसे नियंत्रण करने मुश्किल सबसे हिंस पशु सबसे तेज घोड़ा, ऐसे खुद की उपमा दे रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि सारे पहाड़ों में मैं हिमालय हूं या सारे उच्चारों में मैं ओंकार हूं, तो वैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं देवों का राजा इंद्र भी हूं और इंद्रियों का इंद्रियों में मैं सबसे ज्यादा मन हूं। तो अभी इसलिए ये क्यों बता रहा हूं मैं, तो मन को नियंत्रित करना ये कल करने का काम नहीं है, आज से ही चालू करने का काम है और आज से यानी अभी और बहुत गंभीरता से लेने वाला विषय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दिन के 23 घंटे मन को नियंत्रित करता हूं और 1 घंटा छूट दे देता हूं तो तब जो करता हूं वो मैं दिमाग में नहीं रखता, ऐसा नहीं होता। तो ये है, तो मन के स्वभाव क्या है, सबसे पहला स्वभाव है कि इच्छा करना, जो कुछ भी हमें हमारी इच्छा है कुछ भी पाने की कुछ भी खोने की किसी से मिलने की किसी से मित्रता करने की किसी से दुष्टता करने की किसी को नीचे दिखाने की ये सब इच्छा है ये मन से आती है। मन द्वंद्वात्मक विचार करता है, इसके बारे में हम सफलता से आगे देखेंगे। मन चंचल है, मन तुरंत उत्तेजित होता है और उसका हिसाब देना चाहिए तो हमको 25 पैसे का मुनाफा हुआ तो 1 रुपये का उत्तेजित होगा और वैसे जब 25 पैसे का घाटा होगा तो 1 रुपया डाउन हो जाएगा। तो वो चंचल और उच्छृंखल होने के कारण वो फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखाता है और इसीलिए आज के जमाने में मन नियंत्रित न होने के कारण मानसिक विकारों की वृद्धि हो गई है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है और मन के कारण शरीर पे शरीर के होने वाली व्याधि भी है जिसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें बहुत बार हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसको कहते हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ये सब जो है वो भी हमारा मन नियंत्रित नहीं है इसलिए वो हो रहे, क्योंकि किसी इंफेक्शन से तो वो नहीं हो रहे, किसी विटामिन डेफिशिएंसी से भी नहीं हो रहे, तो क्यों हो रहे? तो हमारा विहार माने हम जो जैसे बर्ताव करते हैं, हमने जैसे खुद से और दूसरे से बर्ताव करना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है इसलिए ये बीमारियां हो रही है। हमें स्ट्रेस आ जाता है, खाना पीना तो बराबर मिल रहा है, किसी को उसकी कमी नहीं है, फिर भी स्ट्रेस है। पुराने जमाने में स्ट्रेस एक ही समय आता था कि जब खाना पीना सोना नहीं होता था, आज के जमाने में स्ट्रेस के कारण हम खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, उल्टा है, तो इसीलिए हमें उसकी बीमारी लग जाती है। तो उत्तेजना, इसलिए तनाव भी आता है, स्ट्रेस जो मैंने अभी बोला हो उसमें बल है। ऐसे नहीं कि मन को ऐसे छोटा सा नन्ना सा शिशु है छह महीने का, बाकी सब तो है उसका, इसकी इच्छा रहती है, वो चंचल रहता है, उत्तेजित होता है, लेकिन उसमें बल नहीं होता, उसको चुप ऐसे आंखें बड़ी करके बताया तो शांत हो जाता है, थोड़े समय के लिए तो होता है, और गतिमान भी नहीं रहता, कहां बच्चा छोटा कहां जाएगा। लेकिन आज अभी हम 100 लोग हैं, उसमें से 50 लोगों के मन कहां कहां नहीं भटक रहे होंगे, कोई हिमालय की चोटी पे होगा तो कोई कन्याकुमारी में होगा, कोई फिर भी घर में होगा, कोई अपने सास के साथ झगड़ा करता होगा, कोई बॉस के साथ झगड़ा करता होगा। तो मन ऐसा है कि उसमें गति है, अभी इधर है तो मैं कह नहीं सकता कि अगले क्षण कहां जाए, और बलपूर्वक हमको खींच के लेता है, हमारे विचारों को खींच के ले जाता है, तो वो मन की है। अभी मन का इच्छा करना जो स्वभाव है वो भगवत गीता में 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा है। भगवान कहते हैं मामे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करशति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है, हालांकि हम भगवान के साक्षात शाश्वत अंश है, और जैसे पूरे समुद्र का जो क्वालिटी है वही क्वालिटी उसके बूंद में है। ऐसा नहीं होगा कि समुद्र की जो क्षारता है वो 4% है और वो बूंद की है वो तो बूंद छोटा है इसलिए उसकी 4% नहीं है, उसकी भी 4% ही है। हम भगवान को कहते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सत्य है, चिद माने बहुत सर्वज्ञ है और आनंदमय है, और हम क्या है, असत अचित निरानंद। वो क्यों है? क्योंकि हमारा तादात्म्य मन के ऊपर है, हम हमारे मन को समझते हैं कि मैं हूं, तो इसलिए मन और ये छह मन के साथ जो छह इंद्रिय है उसके साथ जब हम इच्छा करते हैं तो वो घोर संघर्ष का कारण हो जाता है, और फिर हम प्लानिंग तो करते हैं सुख का और मिलते हैं दुख। क्यों? तो यही है यहाँ की संघर्ष बताया गया है। दूसरा श्लोक है 15वें अध्याय में 9वां श्लोक। श्रोत्रम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाहम विषयानुपसेवते। स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान आंख जीभ नाक तथा त्वचा प्राप्त करता है, वह इस प्रकार मन से इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करना है या करना चाहता है। तो इंद्रिय विषयों का भोग ये सब इंद्रियों से कौन करना चाहता है? तो मन करना चाहता है, तो ये इच्छा करना ये स्वभाव मन का है। दूसरा है द्वंद्वात्मक विचार। द्वंद्वात्मक विचार रहने का रुचि क्या? रुचि अरुचि, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अभी उदाहरण के तौर पे हम सोचेंगे कि मुझे गुलाब जाम अच्छा लगता है लेकिन रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, इसमें केवल मन छोड़ के साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है। गुलाब जाम खाने वाला आदमी रसगुल्ला खा के मरने वाला नहीं है, साइंटिफिकली उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी निकाले तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा कैलोरी, इसमें कम कैलोरी, इसमें कुछ विटामिन की डिफिशियंसी, ऐसा भी नहीं। इच्छा है, मुझे पाव बड़ा अच्छा लगता है, मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का अच्छा लगता है। हालांकि प्रॉब्लम ऐसा है कि घर का शरीर के लिए अच्छा रहता है लेकिन मन तो बाहर ही भटकता है। तो रुचि अरुचि ये मन में है और कहीं नहीं है। जैसे देखा जाए तो एक सब्जी है, अभी मुझे अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती इसलिए बैंगन, तो बैंगन में बुरा लगने जैसा भी कुछ नहीं है और अच्छा लगने जैसा भी कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारा मन उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर वो तय होता है कि बुरा है क्या अच्छा है। हर्ष शोक, मुझे होने वाला आनंद और मुझे होने वाला दुख, ये भी मन में होता है। मेरी बुद्धि कभी आनंदित नहीं होती, मेरा मन आनंदित होता है, या मेरा शरीर भी कभी आनंदित नहीं होता। ऐसे कुछ नहीं, शारीरिक लक्षण आनंद के बहुत है लेकिन मन दुखी है लेकिन शरीर को आनंद मिल रहा है ऐसा कभी नहीं होता। इधर भी बिरबल और बादशाह की एक कथा है कि बादशाह यही कहता था कि जब कोई अच्छी चीज हो तो हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो बिरबल कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी अच्छी तरह से व्यवस्था हो लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं हो या मन दुखी हो तो हम किसी भी अच्छे चीज का भी उपभोग नहीं ले सकते। तो वापिस अकबर ने चैलेंज किया कैसे, तो बिरबल ने कहा कि आप क्या करो, आप आपकी बहन को कल मेरे घर में खाना खाने खाने को भेज दो। अभी बिरबल के घर में खाना खाने का न्योता अकबर की बहन कभी नहीं चुकती थी क्योंकि उनको वो हिंदू स्टाइल के बनाए हुए व्यंजन बहुत अच्छे लगते थे। तो वो गई, बहुत अच्छा चांदी की प्लेट में उसको खाना परोसा, अच्छा सब व्यवस्था थी, दो लोग पंखा कर रहे थे और सारे व्यंजन बहुत अच्छी तरह उसको जो अच्छा लगता है वो सब उधर रखा था। सिर्फ बिरबल ने जब पहला रोटी परोसी तो सिर्फ बोला, खा ले कितना खाना है, तेरे बाप क्या क्या जाता है। तो वो खाड़ कर वहां से उठ के चली आई और इसको बोली कि वो बिरबल को पहले हटाओ नहीं तो मैं चली। तो अकबर ने क्या हुआ, बिरबल ने मैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, सब कुछ उसको चाहिए वही, सिर्फ ऐसे बोला और उसका मन विचलित किया। जब उसके मन में वो किंतु आ गया, उसको दुख हुआ तो वो शारीरिक सुख का भी उपभोग नहीं ले पाया। उसने ऐसे बोले तो कुछ उसको छेद नहीं, किसी बंदूक से तो नहीं मारा था, लाठी से भी नहीं मारा था, लेकिन ये मन है, हर्ष और शोक मन में है। राग द्वेष, राग का अर्थ क्या है, गुस्सा नहीं। राग का यहां अर्थ है कि ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये मेरे बिरादरी का है, मैंने ये मेरा आप्त है और ये शत्रु है, इससे मैं द्वेष करूंगा, इसको जो चाहिए वो मैं दूंगा, इसको जो चाहिए वो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, उसको विपरीत करूंगा। ये राग द्वेष ये भी हमारे मन में है। सुख और दुख, जैसे हर्ष शोक के बारे में कहा वैसे सुख की इच्छा भी और सुख का अनुभव भी हम मन में करते हैं, बुद्धि से नहीं होता। और संकल्प विकल्प ये भी मन का कार्य है, संकल्प करना भी मन का कार्य है और उसको तोड़ना भी मन का कार्य है। जैसे मैं बोला कि कल करूंगा ना आज का, ये भी मन का ही विचार है। मन ही कभी स्थिर नहीं होता। और क्यों संकल्प विकल्प, क्योंकि मन के जो बाकी गुण हमने देखे कि वो चंचल है, अस्थिर है, गति है उसको, तो आज ये अच्छा लगा इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो कल उसको वो अच्छा लगेगा। तो फिर एक्सरसाइज करके तीसरे दिन फिर जॉइंट पेन होना चालू हो जाएगा, फिर नहीं करते आज के दिन छुट्टी लेते, फिर नेक्स्ट दिन ऐसा होगा कि नहीं अभी क्या करें, या जो डाइटिंग कर रहा है उसको हफ्ते में 7 न्योते आएंगे हमारे घर और उनको उनका हृदय कैसे दुखा सकते, इसलिए वो जाएंगे और खाएंगे। लेकिन जो वेइंग स्केल है वजन का तराजू, वो तो दिखाएगा बड़ा हुआ, क्योंकि वो हमारे मन से नहीं चलता। आगे उसको बल गति चंचलता और उत्तेजना है। 6वें अध्याय में 34वें श्लोक में अर्जुन ये कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो ये केवल हमारी समस्या नहीं है, तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल उच्छृंखल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। अभी हम थोड़ा सा अर्जुन के बारे में सोचें। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब किसी को मालूम है? हाँ, माने वो केवल प्रवचन में भी नहीं सोता था और अपने प्रैक्टिस में भी नहीं सोता था। तो अर्जुन को ये नाम मिला, अर्जुन को ऐसे बताया गया था द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन को अंधेरे में कभी खाना मत देना। समझा नहीं किसी ने कि अर्जुन को अंधेरे में खाना क्यों नहीं देना। तो एक दिन ऐसे अश्वत्थामा सब गुरु भाइयों को परोस रहा था, तो अचानक वो जो बत्ती थी दो रात की तो वो बुझ गई और अर्जुन और भीम खाना खा रहा था। तो अर्जुन ने पूछा भीम को, भीम तुम्हें पता चला क्या? भीम बोला, हाँ हाँ हाँ, आज का स्वीट बहुत बढ़िया है। अरे ये नहीं, फिर क्या? अरे अंधेरे में भी हमारा हाथ मुंह में ही जा रहा है। भीम ऐसे बकवास बातें सुनने के लिए मुझे टाइम नहीं, बहुत भूख लगी। तो अर्जुन ने तब बोला कि मेरा हाथ अंधेरे में नाक में नहीं जाता, हाथ में नहीं जाता, मुंह में ही जाता है, तो मेरा बाण क्यों नहीं? और तब से वो हर रात अंधेरे में निशाने की प्रैक्टिस करता था, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था। और इसीलिए नींद पे उसने जो विजय प्राप्त किया है, इसलिए उसका नाम गुड़ाकेश था। ऐसा अर्जुन कह रहा है, चंचल मन है। दूसरे अर्जुन की एक कथा आती है, वो सदैव स्वर्गलोक में गया था। जब युद्ध की घोषणा हुई तो सब शस्त्र अस्त्र लेने के लिए नहीं, उसके पहले ही जब 12 साल का वनवास उनको हुआ तो वो पिताजी से मिलने स्वर्ग में चला गया था। उनके पिताजी है इंद्र, तो उनको मिलने। तो अर्जुन को एक तो इमेजिन कि वो सदैव स्वर्ग में गया था, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें उर्वशी ने उसको देख लिया और उर्वशी ने उसको प्रपोज किया कि कैन यू बी माई बॉयफ्रेंड। समझो हम में से जो पुरुष वर्ग है, ऐसा किसी अप्सरा ने हमको प्रपोज किया, या कोई स्त्री वर्ग है उसको किसी गंधर्व ने प्रपोज किया, तो हमारा क्या उत्तर होगा? नीचे पृथ्वी को पृथ्वी पे किसको पता चलने वाला है? और मैंने जोर जबरदस्ती तो थोड़ी की है, ऑफर तो सामने से आया है, 100% डिस्काउंट। तो अर्जुन ने ना कहा। और लॉजिक क्या था कि अप्सरा है ये इंद्र के उपभोग के लिए है, इंद्र मेरे पिता है तो ये मेरी माता हो गई। अभी ऐसे किसी ने सामने से प्रपोज किया, हे माते सॉरी ऐसे बोला तो उसको कान के नीचे लगाया, ऐसा लगा नहीं होगा। तो उसको लगा और वो गुस्सा हो गई और उन्होंने सीधा बोला कि हाँ बोलो नहीं तो आप नपुंसक। अभी कम से कम इस समय तो हम हाँ बोलेंगे ना, कि जब तक कुछ नहीं था तब तक लॉजिकल आंसर दे सकते थे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हाँ बोलो नहीं तो एक्स वाई जेड ऐसे होगा, तो फिर हाँ बोलने में क्या हर्ज है, जाता क्या है हाँ बोलने में? फिर भी अर्जुन हट नहीं, उसूल उसूल है। तो उनको एक साल के लिए जो तृतीय पंथी होने का शाप उसने दिया, जो उन्होंने अज्ञातवास के साल में बृहन्नडा बन के उन्होंने बिताया, वो उन्होंने वरदान के रूप में लिया। लेकिन ऐसा अर्जुन भगवान को कह रहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़। चंचल होना, सिर्फ चंचल रहेगा तो ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उच्छृंखल होगा तो भी ठीक है, लेकिन हटीला है। एक बार किसी चीज को चिपक गया, जब तक वो चीज मैं प्राप्त नहीं करता तब तक वहां से हटता ही नहीं है, और अत्यंत बलवान भी है। तो इसमें मराठी में कहते हैं कि आधीच मरकट त्यात मध्य प्याला, त्यातच त्यास वृश्चिक दंश झाला। ऐसे हमारी मन की स्थिति है कि आदि पहले ही माकड़ है, मरकट है, बंदर है, उसके ऊपर उसने मद्य पिया हुआ है और उसमें उसको वृश्चिक माने उसको बिच्छू ने काट लिया, तो वो क्या करेगा? हमारा मन वही है एग्जैक्टली, उसका फिगरेटिव एग्जाम्पल कहते हैं इसको। तो इसके आगे ये कहते हैं अर्जुन कि वायु को नियंत्रित करना मुझे आसान है, हम हमारे पेट में जो वायु है उसको भी नियंत्रित नहीं कर पाते, ये पूरे ब्रह्मांड के वायु की बात कर रहे हैं। तो उस तो देखो कि मैं इतना सब अर्जुन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सीरियस बात है मन को नियंत्रण करना। ये मैं दिन में एक घंटा नियंत्रण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, 5 मिनट आंखें बंद करके 11 बार ओंकार कहता हूँ, इससे काम होने वाला नहीं है। ये दिन रात 24 घंटे 12 महीने पूरा जिंदगी करने का काम है तो हम शायद 5-10% इसमें यश मिलेगा। तो अर्जुन कहता है कि ये कठिन है। अभी देखो अर्जुन ने पहले स्कंद में ऐसे बहुत सारे बातें की है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि एक्स वाई जेड 5 रीजन बताए। तो उसके ऊपर भगवान ने क्या कहा कि पंडित जैसे आप बात तो कर रहे हैं लेकिन जिसके जिसके लिए शोक करना नहीं चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हैं। तभी भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन ने तो यहां बता दिया कि मन ऐसा है, तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अशंसो ही महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास है तो कौनते वैराग्यन च गुह्यते। भगवान खुद कहते हैं कि हे महाभाव कुंती पुत्र निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। यहाँ भगवान ने ऐसे नहीं कहा अरे वो तेरे मन की बात है बहुत आसान है, ये दो चीजें करो मन नियंत्रित, ऐसे उन्होंने नहीं बताया। वो बोले हाँ अर्जुन तू कह रहा है वो सही है, मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन फिर जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा, अभ्यास किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति से ऐसा संभव है। दोनों पक्ष है, ये रेल की दो गाड़ी है, दो पटरियां है, एक तो अभ्यास और दूसरा विरक्ति। आसक्ति से अभ्यास करके मन को नियंत्रित नहीं हो सकता है और सिर्फ विरक्ति से बिना अभ्यास के भी मन नियंत्रित नहीं होगा। अभी अभ्यास क्या करना है वो आगे देखेंगे। किसी को बोर हुआ है, सबका मन इधर ही है। क्योंकि विषय क्लिष्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, और कितना स्टोरी भी नहीं डाल सकता। मन के विकार क्या है ये तो सबको मालूम है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इसके बारे में एक एक के बारे में मेरा एक एक प्रवचन रेडी है। मैंने इसमें से काम लोभ और मोह के ऊपर दिए भी है। तो इसका ये विकार को किसी के डाउट है किसी के मन में, काम का मतलब क्या है, काम न करना कुछ ऐसा मालूम, काम का मतलब क्या है, भौतिक इच्छा, उपभोग की भौतिक इच्छा है, फिर कुछ भी उपभोग कर सकते हैं। मोह क्या है, नहीं आसक्ति तो काम हो गई, मोह क्या है, हम तो बोलते हैं षड रिपु षड रिपु, वो 6 रिपु कौन है वो तो समझना, किसके अगेंस्ट लड़ना है वो तो मालूम होना चाहिए अपने को, क्या है मोह, क्या है मोहित होना अलग है, आकर्षण उसमें से एक है। मोह का मतलब है जो नहीं है वो ऐसे दिखना, जो मैं नहीं हूं वो मुझे लग रहा है, मुझे मैं हूं आत्मा लेकिन मुझे लग रहा है मैं देह हूं, एक सामने वाली चीज जो जा रही है उससे मालूम है कि वो मेरी नहीं है फिर भी मुझे लग रही है वो मेरी है, वो भी मोह है, उसको मोहित होना कहते हैं। क्रोध क्या है, ये तो भाषांतर हो गया, क्रोध क्या है, काम असंतुष्ट काम को क्रोध में व्यक्त, असंतुष्ट काम क्रोध में व्यक्त होता है, फिर मुझे नहीं तो किसी को नहीं इसलिए एसिड फेंका जाता है वो क्रोध, ग्राफिक एग्जांपल। लोभ क्या है,
जो मिला है वो ज्यादा मिले,
उपभोग की चीज ज्यादा से ज्यादा मिलते रहे इसके लिए प्रयास करना और ऐसी इच्छा रखना। भिखारी को भी मर्सिडीज का सपना पड़ा तो वो लोभ है, ऐसे नहीं है कि वो पा ही नहीं सकता इसलिए उसको लोभ नहीं कहा जाएगा। केवल विचार भी लोभ है। मद क्या है? जब कुछ चीज मिलती है तो उसके साथ हमें एक अहंकार आ जाता है बहुत ज्यादा, उसको मद कहते हैं, मदांध ऐसा शब्द है। जैसे रावण को हुआ और मत्सर, मत्सर को डिस्क्राइब करते आना चाहिए। क्या है मत्सर? अरे द्वेष तो भाषण करो, व्यक्त करो ना। जो चीज दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है तो मैं वो चीज हासिल करने का प्रयास नहीं करता, सिर्फ दूसरे के पास से वो कैसे जाए या उसके पास है इसलिए मेरे मन में जो जलन होती है वो है मत्सर। तो ये सब मन में है, इसलिए मन का सर्जरी करना आवश्यक है और इसलिए इसके लिए 3 घंटा लगा तो भी चलेगा, हम ब्रेक करेंगे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस। हाँ तो मन पूरा ही बुरा है, तुमने दिया क्यों भगवान? नहीं तो मन में भाव भी है जो दया भाव मन से आता है। बुद्धि से हम किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते लेकिन मन से दया कर सकते हैं। करुणा भी मन से आती है, क्षमाशीलता भी मन से आती है, अनुकंपा एम्पथी ये मन से आती है, सहानुभूति माने सिंपथी ये भी मन से आती है। लेकिन ये भाव अभी कोई यूज करता है कि नहीं या ये भावों की डिसयूज एट्रोफी हो गई है ये देखना पड़ेगा। जैसे हमारी पूछ गल के गई क्योंकि उसका कभी यूज नहीं हुआ, हमारी बुद्धि भी धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ साथ कम होती जाएगी, शक्ति तो वैसे ही कम होती रही, क्षीण हो रही है, पैरों में शक्ति चली जा रही है, तो वैसे ही ये 4 चीज धीरे धीरे मन से जाएंगे क्योंकि डिसयूज नेवर यूज तो फिर क्यों रहे। तो ये भी मन के भाव है। मन से तादाद में समझो हम रखकर जी रहे हैं, मैं माने मन और कुछ नहीं, मन कहता है वो मेरी इच्छा है और मन के हिसाब से मैं चलूंगा, तो उनकी व्यवहार की प्रेरणा ये हमेशा द्वंद्वात्मक रहेगी। मुझे सुख मिलना चाहिए दूसरों का कुछ भी हो, मेरे जो अपने हैं वो उनका अच्छा होना चाहिए, मैं जो मेरे अपने नहीं है उनका नाश होना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए बस, फिर मैं डॉक्टर हूं मैं सर्जन हूं तो बाहर एक्सीडेंट हुए तो भी चलता है। मैं समझो किसी व्हीकल कंपनी का मालिक हूं तो मेरा ग्रोथ के लिए एनवायरमेंट का गड़बड़ हुआ तो भी चलता है, ये मन के ऊपर है। समग्र विचार कभी नहीं करता मन, सिर्फ अपना करता है और अपने का करता है। फिर ऐसा विचार करने वाले आचार करने वालों का दूसरा क्लासिकल आ जाता है, वो तनाव से उत्पन्न व्याधि उनको हो जाती है। तो जिन जिन को तनाव से उत्पन्न व्याधि है उन्होंने अपने मन को टटोलना चाहिए कि क्या मैं मन से नियंत्रित हो गया हूं या मैं मन को नियंत्रित करना चाह रहा हूं। जीवन का उद्देश्य केवल मनोकामना पूर्ति हो जाता है, फिर क्या सच है क्या बुरा है क्या सही है क्या ये सब छूट जाता है और मेरे मन में इच्छा हुई। आपको मालूम है मन कितना खतरनाक चीज है? हमारे शरीर से कोई डर नहीं है। जैसे कि हम माने जब हमारे उंगली को हमारे शरीर में ऐसे मैकेनिज्म दिए कि वो खुद को बचा लेता है, जैसे आग है तो आग में समझो हमने उंगली डाल दी तो हमारे मस्तिष्क तक वो समझते हैं कि जल रहा है, उसके पहले उंगली निकल जाए, उसको प्रतिक्षिप्त क्रिया बोलते हैं। हमारे प्राण भी है वो भी कभी एक्सेस कुछ नहीं करते कि जिससे हमारी हानि हो, सिर्फ एक मन है। 21 गुलाब जाम हो गए हैं, मुझे डायबिटीज है लेकिन 22वां खाऊंगा, मुझे मालूम है कि उसके बाद वॉमिटिंग होने वाला है फिर भी खाऊंगा, क्यों जीववा। कितने ऐसे डॉक्टर है, मैंने ये एग्जाम्पल स्पेसिफिक डॉक्टरों के ग्रुप में दिया था कि उनको पता चलता है कि मेरी जो ब्लड शुगर है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, प्री डायबिटिक का अर्थ है कि उसको डायबिटिक नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा हो गई। उसका सबसे पहले विचार उसके मन में आता है, वो आता है कि अरे डायबिटीज तो होने वाला है, खा लो कितना खाना है। ये मन है जिससे हानि होती है शरीर की, खुद की, खुद के कॉन्शियसनेस की, समाज की भी हानि हो, लेकिन जब तक मन हमारा नियंत्रित नहीं होगा तो ये आगे चलता रहेगा। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज मत करो, कौन कहता है? मन कहता है। खाने की चीज अभी पेट भर गया है, लेकिन जिह्वा के लिए कौन खाता है? मन खाता है। कौन कहता है कि नहीं ये पराये, दिस इज मेरे अपोजिट में है तो इनसे झगड़ा करो? कौन कहता है? मन कहता है। हमेशा कोई हमें जब कोई जीवन में मशवरा देता है तो मशवरा से ज्यादा किसने दिया इसके ऊपर इंपॉर्टेंस कौन देता है? मन देता है। इसने दिया तो वो अच्छा है, इसने दिया तो गलत है। ये जो द्वंद्वात्मक है ये मन है। और बुद्धि का उपयोग केवल मन की वकालत के लिए होता है। जब मुझे कोई चीज चाहिए होती है, ये मन ने एक बार तय किया, फिर बुद्धि काम करना चालू करती कि वो कैसे पाए। और किसी ने उसको पूछा कि नहीं नहीं अब तुमको क्या जरूरत है? अरे फिर मैं भक्त हूं तो क्या ऐसा है क्या कि मैं कुछ प्रगति ना करूं? सब लोगों के साथ जाना पड़ता है, हमारा प्रोफेशन वैसा है। ये सब कुछ जो रीजनिंग आता है वो हमारी बुद्धि देती है, जो मन के तलवे चाट रही होती है। हालांकि मन ने बुद्धि के चाटने चाहिए, लेकिन हम अभागी है कि हमारी बुद्धि उसके तलवे चाट, और वकालत चालू होती है। मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए फिर बुद्धि पूरा कार्य करना चालू है, फिर वो प्लानिंग वगैरह ये सब बुद्धि के कार्य है, लेकिन वो मन के नीचे अंडर काम कर रही है। तो मन का विकास यानी क्या? अभी तो हम मन का पूरा आरती उतार चुके हैं, अभी उसको विकसित करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद का मन से तादात्म्य तोड़ देना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है मन में जो पहली इच्छा है तो पहले उसको शंका के नजर से देखने का। अरे ये आई है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बुद्धि से उसका पूरा सर्वांगीण विचार करके फिर बाद में देखना चाहिए कि ये सही में लॉन्ग टर्म के लिए सब समाज के लिए अच्छी रहेगी तो फिर वो बुद्धि से आई हुई इच्छा है, नहीं तो वो मन की इच्छा है। तो मन से अपना तादात्म्य तोड़ना यही मन का और अपना विकास है। दूसरा, बुद्धि से मन का नियंत्रण करना चाहिए, तब हम ये मन का विकास यानी मन हम ज्यादा से, अरे भगवद गीता में भी आगे दिया है मनोविकारों पे विजय, माने जो षड्रिपु है उसके ऊपर विजय, ये मन का विकास है। मन की एकाग्रता बनाए रखना, चंचल को एकाग्र बना, कॉमेडी है लेकिन वो उसको शांत करना और अनासक्त करना। आसक्ति, अशांति और चंचलता ये मन है, और उसको हम पूरा विपरीत उसको ट्रेन करना चाहते। इच्छा शक्ति, विचार शक्ति और भावना शक्ति का विकास। इच्छा है ना मन में तो क्या इच्छा करना चाहिए, ये इसको भी ट्रेनिंग लगता है। विचार करना है तो किस चीज का विचार करना है, भावना कैसे व्यक्त करना है, ये सब विकास करना ये मन का विकास है। और द्वंद्वों की समाप्ति ये मन के विकास की पूर्णता है। मन से तादात्म्य छोड़ना, भगवत गीता में श्लोक है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। दूसरा अध्याय 55 नंबर का श्लोक। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, इसका मतलब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग, इसका मतलब मन से तादात्म्य छोड़ना, और उसका शुद्ध मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। जब मन को यह ट्रेनिंग मिलता है कि आत्मा को जिससे संतोष होगा उसे ही आप संतुष्ट रहो, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तब वो व्यक्ति जिसका मन ऐसे ट्रेन हुआ है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मनोविकारों से मुक्ति, जो है छठवे अध्याय में पांचवा श्लोक, उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव इहात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन के मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। अभी देखो मन जब मनोविकारों में स्थित होता है तो वो नीचे गिराता है अपने। इसलिए भगवत गीता में 14वें अध्याय में श्लोक है कि काम है त्रिविधम नरकस्य द्वारम आत्मनाशनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात एवं त्रयम त्यजेत। तो काम क्रोध लोभ को त्यजने को बोला है, किसी श्लोक में मोह को त्यजने को बोला है, तो षड्रिगुण को त्याग करने को भगवत गीता में अनेक जगह बताया है। तो यहाँ हमारा मन का उपयोग, तो यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। आगे के श्लोक में ही बुद्धि से मन का नियंत्रण जो करता है उसको मन कैसे बंधुर आत्मा आत्मा मनस्तस्य ययात्मय वात्मनाजितः अनात्मनस्त शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, ये बताने की जरूरत नहीं, इतना ऑब्वियस हो गया है अभी तक के डिस्कशन में कि तो फिर वो जगी सर्व सुखी ऐसा कौन है, तब तो हाथ वर करे मैं हूं क्योंकि मैंने मेरे मन पे विजय प्राप्त की। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा हमेशा। तो जब हमको पूरी दुनिया में हमारे शत्रु दिखते हैं तो याद रखना चाहिए कि वो जो मेन शत्रु है मेरे अंदर बैठा है। कि जब जब हमारा जो मुख्य शत्रु जो मन है वही हमको दिखा रहा है कि सामने वाले हमारे शत्रु हैं। जब हम इसके ऊपर विजय पाएंगे तो हमें सामने शत्रु दिखेंगे ही नहीं, तो वो सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और जब हम मन को जीतेंगे तो द्वंद्वों की समाप्ति हो जाएगी। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। आगे का श्लोक छठवा अध्याय सातवां श्लोक, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। देखो कितना बड़ा स्टेप है मन को जीत पाना जीतना, कि जब हम मन के ऊपर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं हमारी बुद्धि, तो उसके साथ ही साथ हमें परमात्मा का ज्ञान अपने आप हो जाता है। दूसरे शब्दों में जब हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तब बिना मन के नियंत्रण के हम परमात्मा को नहीं जान सकते। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है दोनों। उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान ये द्वंद्व एक से ही है। अभी मन की मन कैसा है, हमें गर्मी में ठंडी चाहिए और जब ठंडी पड़ती है तो गर्मी, तो मन हमेशा जो है ना उसमें कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। इसलिए वो भगवान ने जो कहा है कि अभ्यास है ना तो कहते हैं वैराग्य ना, वैराग्य माने ऐसे नहीं कि जो है वो छोड़ देना, लेकिन जो है उसमें तो संतुष्ट रहो, और चाहिए ये भी चाहिए उसका ये चाहिए उसका वो चाहिए ऐसे तो मत करो, ये वैराग्य का पहला स्टेप है। अभी मन के विकास के मार्ग क्या है, अभी सद्गुण विकास, सदाचार, सुसंस्कार, ज्ञान ग्रहण, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और सात्विक आहार। जैसे कि जितना बड़ा प्रॉब्लम रहता है तो उतने ज्यादा से ज्यादा उसको अटैक करने के लिए हमको लोग लगते हैं, तो इतने सब कुछ करने के बाद कुछ चांसेस है कि हम मन के ऊपर नियंत्रण पा लेंगे, तो उसमें से कुछ कुछ चीजों के लिए श्लोक है तो वो हम देखेंगे। मन के विकास के मार्ग सबसे पहला सत्संग बताया मैंने, क्योंकि सत्संग में बाकी सब आ जाते हैं। मन ने हमारे हमारे सामने कुछ सवाल पूछे कि ये मैं एक ही कुछ चीज करूंगा बाकी सब नहीं करूंगा, उसने तो उसको बोलना चाहिए सत्संग करो। सत्संग में सद्गुण विकास भी होगा, सदाचार भी होगा क्योंकि सत्संग की व्याख्या ही वही है, सात्विक आहार भी होगा, सद्गुण में कोई नहीं चलता, तो इसलिए इसलिए मैंने पहले सत्संग लिया। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चलत्व, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। ये आदि शंकराचार्य जी का श्लोक है। सत्संग के कारण कुसंग का त्याग होता है। जिसका कुसंग का त्याग नहीं हो रहा है उसने जानना चाहिए कि वो सत्संग नहीं कर रहा है। हमें मालूम है कुछ लोग हैं जो हमारे संपर्क में है, वो अच्छा बराबर बर्ताव नहीं कर रहे, लेकिन उनसे आसक्ति हमारी नहीं जा रही, इसका मतलब हम बराबर सत्संग नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने ही हमको परीक्षा, हमारी परीक्षा करनी चाहिए। आदि शंकराचार्य कहते तो ये गलत नहीं होगा। और कुसंग के त्याग से मोह से मुक्ति मिलती है, क्योंकि कुसंग ही हमको कुछ इमेजिनेटिव थिंग्स बताता रहता है कि अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है, हालांकि जो अच्छा नहीं रहता है। तो मोह से मुक्ति से निश्चल होता, मन स्थिर हो जाता है, मन खुद सोचने लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और फिर दृढ़ता से जीवन मुक्ति की ओर वो अग्रसर होता है। मन के विकास के मार्ग दूसरा है संस्कार। जन्म न जायते शूद्र संस्कार भवे बीजा। कलयुग में जन्म से सभी शूद्र है, योग्य संस्कार से ही वो ब्राह्मण के गुण विकसित कर सकते हैं। यहाँ जन्मजात ब्राह्मण और जन्मजात शूद्र जो कि अभी कास्ट सिस्टम है, ये इसमें कहने की ये कहना नहीं है, लेकिन शूद्रों जैसा विचार करना या जो पुरातन काल के जो ब्राह्मण, जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो स्तर के जो ब्राह्मण थे उनके जैसा विकास होना, तो वो केवल संस्कारों से ही होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। बिना संस्कार के कुछ नहीं होता। और संस्कार क्या है? तो संस्कार ये सत्संग, बाद में सद्विचार और सदाचार, इन तीनों का संगम है, जो योग्य समय पे हमारे मन पे एक माने दिखा जाता है। इसलिए बचपन में संस्कार ज्यादा रहते हैं कि जब वो मन विकसित होता है तभी उसको ये चीजें दे देना, तो बाद में उसको वो संस्कारित हो जाए तो उसको पता चलेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। स्वाध्याय, स्वाध्याय कैसा होना चाहिए? छठवा अध्याय 26वां श्लोक। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततो ततो नियम्यै तत् आत्मन्येव वशं नयेत्। भगवान कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना माने एक आज मैं अभी ध्यान में बैठा हूं और मेरा मन अभी चिरकाल के लिए मेरे नियंत्रण में आ गया है, ऐसा नहीं है। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो वो तो करेगा, वो उसका स्वभाव है, तो उसके साथ हम घूमने जाए तो गलत है। हमारी बुद्धि को जब पता चले कि अरे मैं तो अभी जप कर रहा हूं, लेकिन अभी तो मेरा सोच चल रहा था कि घर में आज क्या बनाऊं, या अभी बॉस आएगा तो उसके सामने कौन सा पेपर रखूं, तो वो गलत है। तो खींच के वापिस जपों में लाना, ये स्वाध्याय है। मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। शायद सबका मन इधर उधर भटक रहा था, हमें एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं तो यहाँ आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आया? मन के विकास के मार्ग सदाचार। सदाचार में मनोनिग्रह के बारे में बताया। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। ये मन का तप बताया गया है, जैसे वाचा का तप बताया है, शरीर का तप बताया, तो मन का तप क्या है? तो संतोष, सेटिस्फैक्शन, जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना, ये तप है। अभी के जमाने में ये पिछड़ापन है, और जो शास्त्रों में लोभ कहते हैं इसको अभी के जमाने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो संतोष, सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, अभी के जमाने में ये वैगुण्य है। दूसरे को बोलते बोलते भुला भुला के तुम्हें ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ हो रहा है, ऐसे बोलते बोलते उससे सबसे ज्यादा फायदा निकालने वाला श्रेष्ठ है, लेकिन यहां उल्टा बताया। सरलता, गंभीरता, ग्रेवनेस, ये भी मन का सदाचार है, आत्म संयम, संयम की वृत्ति, ये भी मन का सदाचार है। और जीवन के शुद्धि के लिए हमेशा कार्यरत रहना, ये जो है ये मन के सदाचार है। तो जो कुछ भी चल रहा है उससे विपरीत मन के सदाचार है, एक लाइन में बताया है। और इसलिए हम किसी से भी पूछते हैं, या आप भी अपने मन से पूछो, 20 साल पहले सृष्टि अच्छी थी या आज, कोई बराबर उत्तर नहीं दे पाएगा कि आज अच्छी है। मैं कहता हूं आज अच्छी है, ऐसे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अग्रसर हो रहे गलत रास्ते पे। ज्ञान से मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समनोष्ट्रास्म कांक्षणः, छठवां अध्याय आठवां श्लोक। अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट आत्म साक्षात्कारी योगी जितेंद्रिय, इसमें इंद्रिय में मन भी आता है, होता है, वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। कोई है जो कंकड़ और सोने को एक समान देखे? इस बाजू में, इस बाजू के लोग ये सोचना चालू कर दिए तो ये बाजू के लोग बहुत सुखी हो जाएंगे। वो तो किलो किलो ला के देंगे, ग्राम और तोले में क्यों? तो अभी इसमें और एक नैक है, ये देखना चाहिए। अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट होके आत्म साक्षात्कार होना, इसका मतलब यहां ज्ञान की व्याख्या भी है कि ज्ञान कौन सा हो। ऐसे नहीं कि अंटार्कटिका खंड कहां है, उसमें कितने ज्यादा बर्फ है, या भारत में 1826 साल के किस तारीख में क्या हुआ, ये इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। या कोई शास्त्र के प्रयोग या गणित की भी प्रक्रिया, ये भी इंफॉर्मेशन में ही आते हैं। जो ज्ञान अर्जित करने के बाद, उसकी अनुभूति होने के बाद हमें आत्म साक्षात्कार होता है, वह ज्ञान की बात यहां की गई है। तो वो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा भी हम में होनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल है, आप में से कितने के पास भगवद गीता है? आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता पूरी पढ़ी हुई है? आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता लास्ट 3 महीने में पूरी पढ़ी हुई है? 3 महीने में। आप में से कितने लोग रोज अखबार पढ़ते हैं? बस इतने। अखबार इंडस्ट्री इतनी, और कितने लोगों के पास एक से ज्यादा अखबार आते हैं? फोकट में मिल, बहुत फोकट में एक के ऊपर एक फ्री मिलता है। इसलिए अभी देखो आपका मन है, मन कितना चंचल है। देखो यहां एक अखबार हमको सस्ते में मिल रहा है, इसलिए वहां एक वृक्ष कट रहा है। हमें मालूम है बुद्धि से कि वो वृक्ष कटना गलत बात है, फिर भी हमारा मन क्या कहता है, अरे तेरा क्या जाना। सी मतलब मन को नियंत्रित कहां कहां करना है ये मैं बता रहा हूं। ये तो मतलब मेरी भी गलती नहीं, मेरे पास भी 3 अखबार आते हैं, तो ऐसा मत समझो कि मैं आपकी गलतियां निकाल रहा हूं। लेकिन हम सबको ये सोचना चाहिए कि कहां कहां हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये ज्ञान है, जो ज्ञान हमारे इंद्रियों को और खुला छोड़ देता है वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। और इसीलिए आज का तथाकथित ज्ञान अज्ञान होने के कारण हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पा रहे कि हम सुख की तरफ जा रहे हैं, हम विकास की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि ज्ञान में गड़बड़ है। सेवा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। फिर सेवा करनी चाहिए। सेवा से क्या फायदा होता है कोई बता पाएगा? हमारा मन बहुत कैलकुलेटिव है, मैंने इसको इतना दिया तो तुरंत लिख देता है उसके अकाउंट में, अभी इससे मैं कितना दूंगा। लिटरली गृहस्थ जीवन में आजकल के बहुत से घरों में ये पाया जाता है कि जब कोई पत्नी पति के लिए कुछ काम करती है या पति पत्नी के लिए कुछ काम करता है तो उसकी वसूली मैं कब करूंगी उसका प्लानिंग भी हो जाता है। या कभी किसी की गलती को माफ कर दिया तो एक मन में रहता कि चलो अभी मैं गलती करना तो उसको माफ करना ही पड़ेगा। सी गृहस्थ आश्रम का सिद्धांत है कि दो शरीर एक आत्मा एक मन, और जहां हमारा कैलकुलेटिव मेंटेलिटी चालू हो गया तो ये कैलकुलेटिव मेंटेलिटी बंद करने के लिए एकमात्र उपाय सेवा, कि मैंने तो कर लिया लेकिन इसका कुछ फल मुझे नहीं चाहिए। और इसीलिए भगवान ने कहा कि भगवत गीता का ज्ञान कब आएगा, तुम गुरु से विनित होकर जिज्ञासा करो इतना तक नहीं है, और उनकी सेवा करो। जब तक सेवा नहीं होगी, जब तक हमारा कैलकुलेटिव मेंटेलिटी खत्म नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान आने वाला नहीं है। तो जब ये देखा जाएगा, जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ये देखेगा कि आप में वो भाव आ गए हैं, तभी वो ज्ञान आपको देगा, सत्य देगा, जो भगवद गीता का ज्ञान है। ध्यान से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, छठवा अध्याय 12वां श्लोक, सिर्फ 10 मिनट है, चलेगा? अभी श्लोक नहीं पढ़ता। योगी को चाहिए कि आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, हृदय को शुद्ध करने के लिए, हृदय में और ज्यादा इच्छा करने के लिए, निरोगी जीवन करके और ज्यादा भोग इंद्रिय भोग करने के लिए योगाभ्यास नहीं बताया, ध्यान नहीं बताया। आज के जमाने में क्या है, किसी को हम योगा करते हैं और क्या करते हैं, योगा करने के बाद जो मेरी डाइजेस्टिव पावर इंप्रूव होती है तो होटल में जाके खाते हैं। तो योगा का मतलब है हृदय को शुद्ध करना। यहाँ शरीर की शुद्धि की भी बात नहीं की जाती। अशुद्ध अन्न ग्रहण करके सात्विक अन्न नहीं खाया तो मन कैसे सात्विक रहेगा? तो योगाभ्यास करने को बताया है, भगवान ने बताया। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। हमारा आहार शुद्ध रहेगा तो ही हमारा सत्व शुद्ध रहेगा, और जब सत्व शुद्ध रहेगा तो ही हम मन के ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, मैं बहुत बार दे चुका हूं ये, कि एक पोल्ट्री फार्म वाले ने फ्री में मिलता है इसलिए होटल का खाना मुर्गियों को खिलाना चालू कर दिया। बाद में उसको उस मुर्गियों को स्लॉटर हाउस नहीं भेजना पड़ा, क्योंकि वही एक दूसरे को झगड़ के मर गए। इतना इफेक्ट वो होटल के खाने का उनके ऊपर हुआ, और वो होटल का खाना हम बहुत चाव से खाते हैं। घर में पालक पनीर का रंग होटल के पालक पनीर जैसा आता नहीं है, क्योंकि वहां वो कलर डालते हैं, उनका अपने हेल्थ के लिए क्या है, घर में नहीं डाल सकते। तो ये हम नहीं सोचते, क्योंकि मन तो उधर भटक रहा है। तो ये ध्यान देना चाहिए। मन का पूर्ण विकास किसमें है? संकल्प करना हो तो कौन सा करो? अभी संकल्प की बात पे हम वापिस आए हैं। भगवान कहते हैं मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास तेमे युक्त तममता। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो संकल्प करना है तो 1 जनवरी से जो 4 माला जप कर रहा है वो 8 माला का संकल्प करे, जो 8 माला कर रहा है वो 16 माला का करे, जो हफ्ते में एक भी बार मंगल आरती को नहीं आता वो 1 बार मंगल आरती को आए, जो हफ्ते में सिर्फ संडे को प्रोग्राम को आता है वो वेनसडे को भी आए, 1 का 2 करे, 2 का 4 करे। ऐसा नहीं, हम कहीं से भी, मन को कंट्रोल करना है तो कहीं से भी कर सकते। ऐसा नहीं कि मेरा मन बहुत ही गाया गुजरा है मैं नहीं कर पाऊंगा, भगवान है तो भगवान करे, भगवान ने तो शास्त्र दे दिए। तो ये जब हम संकल्प करते हैं तो वो संकल्प कभी उसमें विकल्प नहीं आता। दूसरा मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यति मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे, ऐसे भगवान कहते हैं। और भगवान के अंश भगवान में जब वास करना चालू करते हैं तो भगवान की शक्ति जो मन है वो अपने आप नियंत्रित हो जाती है। दिस इज इजी फॉर्मूला। जैसे किसी कुत्ते को, समझो कोई डॉबरमैन कुत्ता है, वो भौंक रहा है अपने ऊपर और हम अपने बलबूते पर उससे फाइट कर रहे हैं, मैदान खुला है और वो और हम लड़ाई चालू है, कौन जीतेगा? और पत्थर नहीं है, काठी नहीं है, हम अपने हाथ से और वो उनके उसके हाथ से कुत्ता जीतेगा। लेकिन उसका मालिक कौन है हमें मालूम है, और हम उसको बोलेंगे अरे जरा उसको हाथ उसको पुकारो, वो बोलता है टॉमी, वो अभी डॉबरमैन को पूछनी होती वो काट दी जाती, फिर भी जिसकी है वो दुम हिला के अपने है करके आ जाए। तो हमारा मन है वो कुत्ता है और भगवान है उनकी शक्ति है। तो जब हम भगवान को बोलेंगे कि अरे ये देखो हम आपकी जरा शक्ति को जरा नियंत्रित करो, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो भगवान हमारा प्रयास देखेंगे और हमें वो शक्ति देंगे जिससे हम हमारा हमारे मन को नियंत्रित करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई सवाल प्रश्न, किसी का मन नियंत्रित हो चुका है तो जरा बताइए, हम आपका चरण स्पर्श करना चाहेंगे। किसी को कोई सवाल नहीं है, सबको क्लियर एकदम मैटर? हाँ बोलिए।
वो माइक है क्या?
इधर आके पूछिए। मेरे ख्याल से इस चार दीवारी में रहने वाले तो कोई तोड़ेगा नहीं, ऐसा मेरा खुद का एक अनुमान है। मैं सबसे साष्टांग दंडवत करके भीख मांगता हूँ कि कृपया आप कल ऐसा कुछ ना करें जिससे हमें अगला साल शर्मिंदगी से जीना पड़े। तो इनका सवाल ऐसा है कि कल के लिए क्या करना चाहिए? अभी तो 2 साल बाद 4 साल बाद मरते दम तक वो बात ठीक है, वो तो सब समझ में आया, तो कल का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो कल के रेजोल्यूशन के लिए यहाँ एक सुविधा उपलब्ध है कि जिनको मन की नहीं सुनना है, मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो कल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ भजन संध्या है। 7 बजे से, हाँ जो 7 बजे से आ सकते हैं उनके लिए 7 बजे। 31st हॉलीडे रहता है क्या? वर्किंग डे नहीं रहता है क्या? रहता है ना। 7 बजे से भी आ सकते हैं, 7 बजे से जो आएंगे उनके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मन भटकेगा ना, अरे वो क्या कर रहा है, और प्रसाद भी अच्छा रहेगा। तो कृपया आप सब लोग आ जाइए, हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगला साल मैं कुछ ऐसे संकल्प लू जिससे मुझे ही आपके सामने सिर ऊंचा करके मैं आपको बताऊं अगले 31st को कि भगवान मैंने ये संकल्प लिए थे मेरे मन को नियंत्रित करने के लिए और मैंने वो पूरे कर दिए। तो जब हमें हमारे में विश्वास आता है तो फिर हमारी भक्ति बहुत सहज हो जाती है और मनोविकारों से हमारी मुक्ति भी हो जाती है। आजकल के जो मनोविकार है वो हम पे ही विश्वास नहीं रखते, इसके लिए ज्यादा बढ़ गया। और किसी का कोई सवाल? और इसमें ऐसा नहीं है कि कभी कभी हम कहते हैं कि ये 31st में जाऊंगा, आई कैन लूज द बैटल टू विन द वॉर, ऐसा मन के सामने नहीं होता। वंस यू स्टार्ट लूजिंग बैटल देन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और किसी का कोई सवाल? जब भी एक बहुत आसान फंडा है, जब किसी से हमें क्रोध आए, जब किसी का बर्ताव हमें अच्छा नहीं लगे, जब कोई तकलीफ हमें आए, तो सबसे पहले अपने मन को झांको, मन को टटोलो, समझ में आएगा कि ये तो परिस्थिति कल इसके ऊपर आई थी, हम हंसे थे, आज मेरे ऊपर आई तो हम दुखी हो गए। एक बार मन नियंत्रित हो गया तो फिर कोई कोई बाहर की चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, कोई भी एडवर्टाइजिंग हमें ऐसे नहीं बताएगा ये अच्छा है वो अच्छा है ये ले लो वो ले लो तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। तो एक ही है भगवद गीता में, तो एक ही बताया है कि मन ही शत्रु है मन ही मित्र है। तो जो एक चीज हमारे अंदर है कि जिसके ऊपर हम कुछ तो इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं वो मन है। हम हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और हम दूसरे के मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े दाम्भिक हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। और दाम्भिकता से हम ही दुखी होते हैं, ये तो देखा गया है। और किसी का कोई सवाल, आपको किसी कोई मेरी बात जरूर अच्छी नहीं लगी होगी तो कृपया मुझे क्षमा कर दो। जो कुछ भी इसमें तत्व ज्ञान है वो श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता यथारूप इसमें दिया हुआ है, सिर्फ वो उस एंगल से पढ़ना चाहिए। भगवद गीता ऐसी चीज है कि जो कम से कम 3 महीने में एक बार श्लोक और अर्थ तो देखना ही चाहिए। केवल 700 श्लोक है, एक बार भगवद गीता पढ़ने बैठोगे केवल अर्थ पढ़ने के लिए केवल 2 घंटा लगता है। हफ्ते में भी हो किया जा सकता है 2 घंटा। एक तो कोई अपना सीरियल देखते रहेंगे हफ्ते में तो वो तो 1-1 घंटा टीवी के सामने उतार देते हैं कुछ बिना फायदे के, मन को विचलित करते हैं, मनोरंजन, शरीर रंजन नहीं है ऐसे। हाँ क्या हो, क्रिकेट की मैच में उधर वो लोगों को पैसा मिलता है हमको हार्ट अटैक आता है, ये है मनोरंजन। इसलिए कृपया मैं विनती करता हूं आपके मन को नियंत्रित करने की आधी शक्ति, या आधी तो क्या 99% शक्ति केवल भगवद गीता और हरिनाम में है। हमको सिर्फ एक ये दो कर रहे हैं तो सिर्फ 1% प्रयास करना, और ये दो नहीं कर रहे तो हम कितने भी फाइटिंग करें हम अलग ही जगह माने अंधेरे में सिर्फ तीर चला रहे बस। तो कृपया सबसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि भगवद गीता को जो भगवान ने इतने कष्ट से दी हुई है अपने हृदय में धारण करो, हृदय से लगा के रखो और बार बार पढ़ो। ये ऐसा बुक किताब नहीं है कि एक बार पढ़ा और मुखद उद भी भगवद गीता है लेकिन वो हम अर्थ नहीं पढ़ेंगे, हमको उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं। वो इसको मराठी में पोपट पंची कहते हैं कि आता तो है श्लोक लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं मान। तो कृपया सीरियसली हो, भगवान ने केवल 700 श्लोक दिए, मैं भागवतम की बात नहीं कर रहा हूँ 18,000 श्लोक है, वेदों की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवद गीता तो 3 महीने में एक बार पढ़नी जरूरी है और 1 साल में प्रभुपाद के परपोर्ट्स के साथ पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स आने के पहले ही खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह होता है कि हम जब भक्ति में आता है तो बहुत नए स्तर पे भगवद गीता पढ़ लेते एक बार, और एक बार वो पढ़ के रख दी तो एज इट इज रखी जाती है, हाँ वो हो गए। तो इसलिए आप में से कितने लोग ये रविवार या सत्संग में पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, पिछले 6 महीने से आ रहे हैं और 6 महीने और ऊपर माने 10 साल से भी आए तो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। उसमें से कितने लोग जप नहीं कर रहे हैं कि जो 6 महीने के ऊपर आ रहे हैं लेकिन जप नहीं कर रहे, ये एक मन का खेल है, जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम सिर्फ एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो जाएगा और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट को कोई मायने नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता। सेवा, ये सेवा है आपकी कि आप कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो जो कुछ भी एक्सपेक्टेड है आपसे तो वो करें। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप 16 माला करें लेकिन जो प्रोग्राम में रेगुलरली आ रहे हैं लेकिन जप नहीं कर रहे या सिर्फ मन में चल रहा है जप माला नहीं है तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम 2013 के 1 जनवरी से आपका 4 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू होना चाहिए और 31 दिसंबर 2013 में मुझे आके वो आपने बताना चाहिए कि मैंने ये संकल्प किया है और भगवान की दया से वैष्णवों की कृपा से ये मैं अभी तक चालू रखा हूँ, ये सही संकल्प है ऐसा मुझे लगता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री राधा मदन गोपाल आचरित की।